दिन भर 21 अप्रैल दिन रविवार, मैं हूं वात्सल्य राय। श्रीलंका में ईस्टर के दिन चर्च और होटलों में धमाके, अब तक 207 की मौत। पीएम विक्रम सिंघे ने कहा, देश को स्थिर करने की साजिश।
द गवर्नमेंट वी आर डूइंग आवर बेस्ट, वी आर डूइंग ऑलमोस्ट बेस्ट। The Prime Minister has convened the...
श्रीलंका में हुए धमाकों की पूरी दुनिया में निंदा, पोप फ्रांसिस ने की प्रार्थना।
Ho preso con tristezza e dolore la notizia dei gravi
attentati. भारत में तीसरे चरण के चुनाव के लिए थमा प्रचार का शोर, और सुनवाएंगे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से खास बातचीत।
भारतीय जनता पार्टी का मुश्किल है पहले और दूसरे चरण में खाता खुले। 7 चरण में चुनाव है, 2 डिजिट में भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाएगी।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। श्रीलंका में आज 8 जगहों पर सिलसिलेवार तरीके से बम और आत्मघाती धमाके हुए। पुलिस का कहना है कि देश के चर्चों और आलिशान होटलों में हुए इन धमाकों में कम से कम 207 लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों घायल हैं। इस घटना के बाद 7 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। श्रीलंका के पूर्वी तट के बाटीकलो के एक चर्च में हमला हुआ है। इस शहर का टीचिंग अस्पताल अधिकतर घायलों का इलाज कर रहा है। इस अस्पताल के उपनिदेशक डॉक्टर जुलावीरा संगम मोहना कुमार का कहना है कि मारे गए लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। हमने घटनास्थल से बहुत सारा काला धुआं उठते देखा। इसके बाद हमें चर्च से मरीजों को अस्पताल लाने के लिए कहा गया। हमें घटनास्थल पर 40 हताहतों का पता चला और 25 शव मिले। इनमें से 5 शव बुरी तरह से जले हुए थे, जिनको पहचानना बहुत ही मुश्किल है। शुरुआत में हमें 5 बच्चों के शव मिले और साथ ही घायल बच्चे भी मिले। मुझे ठीक ठाक संख्या नहीं मालूम, लेकिन 15 घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये थे श्रीलंका के बाटीकलो के एक अस्पताल के उपनिदेशक के शब्द। वहीं ईसाइयों के शीर्ष धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने आज ईस्टर के मौके पर श्रीलंका के हमलों को भयावह बताया है। वेटिकन में ईस्टर पर दिए अपने भाषण में उन्होंने ईसाई समुदाय और सभी पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। सेंट पीटर स्क्वायर पर इकट्ठा भीड़ से उन्होंने कहा कि सीरिया संघर्ष के राजनीतिक समाधान के लिए अब एक नई प्रतिबद्धता की जरूरत है। लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया। 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस दौरान गुजरात की कुल 26, केरल की कुल 20, कर्नाटक की अंतिम 14 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होगा। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूक्रेन में राष्ट्रपति पद के लिए चल रहे मतदान में हास्य अभिनेता वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और वर्तमान राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के बीच मुकाबला है। ओपिनियन पोल में माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पोरोशेंको को हरा सकते हैं। पोरोशेंको 2014 से देश की कमान संभाल रहे हैं। वहीं हास्य अभिनेता ज़ेलेंस्की ने भ्रष्टाचार और अस्थिर सरकार के खिलाफ अपना चुनाव अभियान शुरू किया था, लेकिन उनको राजनीतिक अनुभव बिल्कुल नहीं है और उन्होंने कुछ ही अपनी नीतियों के बारे में स्पष्ट किया है। पोरोशेंको ने चेताते हुए कहा है कि यूक्रेन को अनुभवी राजनेता की आवश्यकता है, जो रूसी खतरे और पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी विद्रोहियों से निपट सके। कीव में अपना वोट डालने के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा, आज यूक्रेन के लोगों की जीत होगी, यूक्रेन की जीत होगी और मुझे आशा है कि निष्पक्ष विकल्प की जीत होगी। हम यूक्रेन को एकजुट कर चुके हैं और अब देखिए, हमने पत्रकारों को भी एकजुट कर दिया है। ये थे यूक्रेन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और हास्य अभिनेता वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के शब्द। सूडान की राजधानी खार्तूम में आज रक्षा मुख्यालय के बाहर हजारों प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर नागरिक प्रशासन की मांग की। उनके हाथों में झंडे थे और उनका कहना है कि वे तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। शनिवार को सैन्य और नागरिक नेताओं ने बैठक कर शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण पर आगे की बातचीत करने पर सहमति जताई थी। वहीं ऐसी भी रिपोर्ट है कि इस घोषणा में देरी हो सकती है। माली के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि संदिग्ध जिहादियों के हमले में 10 जवानों की मौत हुई है। मोरिटेनिया से लगी सीमा के नज़दीक मध्य क्षेत्र गुआयर में ये लोग मारे गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जिहादी जंगल के नज़दीक अपने बेस से निकल कर आए थे। वहीं शनिवार को माली में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक मारा गया था। शुक्रवार को देश की सुरक्षा समस्या पर होने वाले अविश्वास प्रस्ताव में हार जाने के डर से पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं वात्सल्य राय। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं लाइव। ईस्टर ईसाई समुदाय के लिए खुशी का पर्व, लेकिन श्रीलंका में खुशी का यह मौका आज हुए 8 धमाकों की वजह से मातम में बदल गया। इन धमाकों में अब तक 207 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और करीब 450 लोग घायल हुए हैं। श्रीलंका के रक्षा मंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया को जानकारी दी कि खुफिया एजेंसियों के पास हमलों को लेकर जानकारी थी, लेकिन एहतियात के कदम उठाने के पहले ही हमले हो गए। उन्होंने दावा किया कि हमले की योजना विदेश में बनी और ये सभी आत्मघाती हमले थे। अब तक इस मामले को लेकर 7 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन श्रीलंका सरकार का कहना है कि खुफिया जानकारी में एक नाम का जिक्र किया गया था और हमले में मारे गए एक शख्स का नाम इससे मिलता है। सरकार ने कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया है। स्कूल कॉलेजों को अगले 2 दिन तक के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार लोगों से शांत और संयत रहने की अपील कर रही है, लेकिन उन लोगों के लिए भावनाओं पर काबू रखना आसान नहीं जिन्होंने हमले को करीब से देखा और इसमें अपनों को खो दिया। कोलंबो में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बीबीसी को बताया, सिल्वेस्टर नाम के ये व्यक्ति जानकारी दे रहे थे कि कोलंबो की चर्च में उन्होंने धमाके की आवाज सुनी, फिर छत उन पर गिर पड़ी। उन्होंने आगे बताया कि वो अपने बच्चों को लेकर बाहर की तरफ भागे। जब अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपने साले और अपने बेटे को वहां देखा। दर्द बयान करने वाली ऐसी कहानियां कई लोगों के पास हैं। इन धमाकों की शुरुआत सुबह उस वक्त हुई जब ईसाई समुदाय के लोग ईस्टर की प्रार्थना के लिए चर्च में जुटे थे। इन धमाकों में 3 चर्च और 4 होटलों को निशाना बनाया गया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इन हमलों को देश को स्थिर बनाने की कोशिश बताया है। इस मामले पर ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता संदीप सोनी।
ईस्टर की सुबह जब श्रीलंका का ईसाई समुदाय खुशी के माहौल में प्रार्थना के लिए चर्चों में जुटा था, श्रीलंका में चर्च और होटलों में सिलसिलेवार धमाके होने लगे। पहला धमाका कोलंबो की सेंट एंथनी चर्च में हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी के बीच लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। शाम तक कुल 8 धमाके हुए। इनमें से 6 धमाकों की खबर सुबह के वक्त एक के बाद एक दिन भर आती रही। सुबह 3 धमाके नेगम्बो, बट्टिकलोवा और कोलंबो के चर्च में हुए। इनके अलावा कोलंबो के शंग्रीला, किंग्सबरी और सिनेमन ग्रांड होटलों को भी निशाना बनाया गया। कोलंबो के सेंट एंथनी चर्च के बाहर श्रीलंका सरकार के मंत्री मानो गणेशन ने सुबह हमले के बाद बीबीसी को बताया,
द गवर्नमेंट दे आर डूइंग आवर बेस्ट, दे आर डूइंग ऑलमोस्ट बेस्ट, द प्राइम मिनिस्टर हैज कन्वीन्ड।
श्रीलंका के मंत्री मानो गणेशन कह रहे थे कि सरकार के तौर पर हम जो कुछ संभव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विशेष बैठक बुलाई है। हमें इस बात का सदमा लगा है कि सरकार देश में शांति और समृद्धि के लिए काम कर रही है, लेकिन ये हमले हो गए। अगर कोई सोचता है कि वो इस देश में हिंसा की वापसी करा सकता है तो वो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद रक्षा मंत्री रुवान विजयवर्धने ने बताया कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने सेना के कमांडरों और पुलिस महानिदेशक से बात की है। देश में सक्रिय सभी अतिवादी समूहों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इन अतिवादी समूहों को काम करने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। वो चाहे किसी भी धर्म के अतिवादी हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल CID, पुलिस और सेना जांच में जुटी है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि प्रमुख सोशल मीडिया नेटवर्कों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है। नेगोम्बो के सेंट सेबेस्टियन चर्च को धमाके से काफी नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों में ये चर्च पूरी तरह तबाह दिख रहा है। चर्च की छत उड़ गई है, चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। यहाँ कई लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने बीबीसी को बताया है कि मरने वालों में 9 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। बट्टिकलोवा के अस्पताल कर्मियों ने बताया कि वहाँ कम से कम 27 लोगों ने दम तोड़ा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने लोगों से शांति बनाए रखने और जांच में सहयोग करने की अपील की है। वहीं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि इन धमाकों के जरिए देश और उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने की कोशिश की गई है। मैं इसे देश और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की गंभीर कोशिश के तौर पर देखता हूँ। मैं धार्मिक संस्थानों और राजधानी के कुछ होटलों पर हुए इन हमलों की पुरजोर निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने आगे कहा, जब कभी देश में ऐसी घटना होती है आप उसका प्रतिकूल असर देखते हैं। आप पाएंगे कि हमारे देश का पर्यटन प्रभावित हुआ है। ऐसा सभी देशों में होता है। पर्यटन एक उभरता हुआ क्षेत्र है। शुरुआत में आर्थिक असर भी नजर आएंगे। श्रीलंका में इन हमलों के बाद बड़ी देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। हालांकि लोग पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आते रहे। कई लोग अस्पतालों में खून देने के लिए भी पहुंचे। कोलंबो के आर्क बिशप मेलकम रंजीत ने सरकार से दोषियों को दंडित करने की मांग की है।
आई कंडेम विद माय टू द अटमोस्ट ऑफ माय कैपेसिटी।
मैं इन हमलों की पुरजोर निंदा करता हूं। इसने लोगों को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए और ये पता लगाए कि इसके पीछे कौन है। उन्हें बिना किसी दया के दंडित किया जाए। सिर्फ जानवर ही इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। ये थे कोलंबो के आर्क बिशप मेलकम रंजीत के शब्द। श्रीलंका में साल 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद से आमतौर पर शांति रही है। श्रीलंका की कुल आबादी में करीब 70% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। हिंदुओं की संख्या करीब 12.5% और मुसलमान 10% से भी कम है। साल 2012 में हुई जनगणना के मुताबिक श्रीलंका में करीब 15 लाख ईसाई रहते हैं और इनमें से ज्यादातर रोमन कैथोलिक हैं।
रिपोर्ट सुना रहे थे संदीप सोनी। श्रीलंका सरकार का कहना है कि उनके पास इनपुट था लेकिन वो हमले नहीं रोक सकी। सरकार दोषियों को गिरफ्तार करने और कार्रवाई करने का दावा भी कर रही है। इससे क्या संकेत मिलता है? मैंने ये सवाल किया श्रीलंका के समाज और राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार एस वेंकट नारायण से।
हाँ, ये सच बात है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरह 8 अलग जगहों में कुछ ही समय के अंदर, मतलब सुबह 8:45 बजे जब गिरजाघरों में बहुत से लोग ईस्टर मनाने के लिए पहुंचे थे, उस समय ये अटैक्स किए गए हैं और 4-6 घंटे के अंदर 8 ब्लास्ट हुए हैं। इसका मतलब ये सब प्लान करने के लिए, जैसे बॉम्बे में हुआ था सीरियल अटैक, इसी तरह ये जबरदस्त प्लानिंग के बाद ही ऐसा चीज किया गया है। तो ऐसा लगता है कि श्रीलंका में ऐसा कोई संस्था नहीं होगी जो ये सब बगैर किसी बाहर संस्था के मदद से कर सके। तो शायद ये श्रीलंकन सरकार ये कहना चाहती है कि कोई विदेशी संस्था जो ये टेररिज्म में इन्वॉल्व होते आ रहा है, वो शायद ये प्लान किया होगा लोकल मदद के साथ। और वहाँ 10 दिन पहले वहाँ के पुलिस अधिकारी ने भी एक संस्था का नाम ली थी, लोकल संस्था का, जिसका प्लान था कुछ गिरजाघरों के ऊपर और इंडियन हाई कमीशन के ऊपर भी ये ब्लास्ट होने की पॉसिबिलिटी है बोल के उनको एक विदेशी इंटेलिजेंस संस्था उनको सलाह बताए थे, ऐसा बोल रहे थे। तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा आखिरकार किसने किया है। लेकिन जो स्टेटमेंट श्रीलंका में अभी सरकार ने इश्यू किया है, उससे साफ जाहिर होता है उनका शक कोई विदेशी संस्था के ऊपर है। हो सकता है कि कोई ऐसा ही संस्था हो, हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा आखिरकार किसने किया है।
2009 के बाद से श्रीलंका में अमूमन शांति रही है और ये जो अटैक हुए हैं आज के, इसके बारे में जैसा आप बता रहे हैं कि अधिकारियों के पास लगभग 10 दिन से सूचना थी, तो क्या ये किसी तरह का कोई लैप्स है? हालांकि सरकार इसको बता रही है, श्रीलंका की सरकार, कि ये देश को अस्थिर करने की साजिश है।
देखिए, जब इंटेलिजेंस मिलता है ये इतना आसान नहीं है कि भाई आप ये अटैक फलाना जगह में हो सकता है, वहां सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाए। यू नो, काफी हिंदुस्तान में भी जब भी ऐसे अटैक्स हुए हैं तो लोगों को पकड़ नहीं पाए समय में, और ऐसे अटैक्स को रोकने की कोशिश जरूर किए गए थे लेकिन अधिकारी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हालांकि उनके पास ऐसा इंफॉर्मेशन था, लेकिन स्पेसिफिकली फलाना गिरजाघर के ऊपर ही अटैक होएगा बोल के इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। और श्रीलंका में 200 गिरजाघर है वैसे, प्लस ऐसे सीरियस मामला है, कोई बाहरी ये ब्लास्ट का षड्यंत्र रचाया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमें पता चलेगा इसके पीछे कौन है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार एस वेंकट नारायण। भारत ने श्रीलंका में हुए धमाकों की कड़ी निंदा की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मजबूती के साथ श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। पोप फ्रांसिस और दुनिया के कई और देशों ने भी हमले की निंदा करते हुए श्रीलंका के साथ एकजुटता प्रदर्शित की है। सुनिए बीबीसी संवाददाता दिनेश उप्रेती की रिपोर्ट।
वेटिकन में ईस्टर की प्रार्थना के दौरान पोप फ्रांसिस भावुक हो गए। उन्होंने श्रीलंका में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के पीड़ितों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की।
Apprezzo con tristezza e dolore la notizia dei gravi attentati।
पोप फ्रांसिस कह रहे थे, प्यारे भाइयों और बहनों, ईस्टर के दिन श्रीलंका में कुछ चर्चों और कुछ दूसरी जगहों पर हमले होने का दुखद समाचार मिला है। मैं हमले का शिकार बने ईसाई समुदाय के प्रति संवेदना जाहिर करना चाहूँगा। ये हिंसा की निर्दयतापूर्ण कार्रवाई है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रीलंका में चर्च और होटलों पर हुए हमलों की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि वो श्रीलंका में हुए भयावह धमाकों की कड़ी निंदा करते हैं। मोदी ने कहा है कि इस क्षेत्र में ऐसी बर्बरता की कोई जगह नहीं है। भारत श्रीलंका में लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों और घायलों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि श्रीलंका में दिक्कत में फंसे भारतीय कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने ट्विटर पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भी हमले की निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार इन आतंकवादी हमलों की निंदा करती है। श्रीलंका के ईसाइयों पर उस समय हमला किया गया जब वो ईस्टर के दिन प्रार्थना करने आए थे। होटलों में धमाके हुए, ये सब सुनियोजित आतंकी हमले का हिस्सा है। ये थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के शब्द। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा ऑर्डन और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने भी हमले की निंदा की है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर समेत कई खिलाड़ियों ने भी हमले की निंदा की है।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती। और अब बात भारत की। भारत में आम चुनाव हो रहे हैं। 23 मई को तीसरे दौर का मतदान है और इसके लिए आज प्रचार थम गया। चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा दिलचस्पी उत्तर प्रदेश को लेकर है। साल 2014 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जादू चला था। इस बार बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है, लेकिन बीजेपी इस गठजोड़ पर सवाल उठा रही है। हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से खास बातचीत की और तमाम अहम सवाल उनके सामने रखे।
हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले हमारा सवाल ये कि अभी मैनपुरी की रैली थी, एक ऐतिहासिक घटना बताई जा रही है, 24 साल के बाद मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी, एक साथ एक मंच पर आए। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इसके लिए?
देखिए, मेहनत तो हर कार्य के लिए करनी पड़ती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेताजी, आदरणीय मायावती जी एक साथ आई हैं, ये बड़ा संदेश है। और बड़ा संदेश इसलिए है कि गठबंधन जो हुआ है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का, ये कहीं ना कहीं आम लोगों का गठबंधन है। जो जनता गरीब है, गांव के रहने वाले लोग, जिन्हें आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जो हक और सम्मान मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिला। और मैं समझता हूँ नेताजी ये बात जानते हैं कि आज देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। संविधान पर सीधी सीधी चोट पहुंचाई जा रही है और संविधान से मिले हुए अधिकारों को छीना जा रहा है। पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार झूठ पर है। जनता उनसे पूछना चाहती है कि 2014 में जो वादे किए थे वो हमारे कितने पूरे हुए हैं? अच्छे दिन का नारा दिया, 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष देंगे, इधर किसानों की आय बढ़ जाए, वो सब कुछ तो हुआ नहीं। इधर वो दावा करते हैं कि पूरे देश में किस तरीके से उन्होंने गैस सिलेंडर और चूल्हे बांटे हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि सरकार की योजना थी और सरकार के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे सिलेंडर, क्योंकि सरकार अपने कॉरपोरेशन को घाटे में नहीं जाने देना चाहती थी। उस कॉरपोरेशन को बचाने के लिए उन्होंने गरीबों के लिए योजना बनाई और आज स्थिति ऐसी है कि एक भी गरीब दोबारा सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है, क्योंकि सिलेंडर बांटने के बाद सिलेंडर महंगा कर दिया क्योंकि उस कॉरपोरेशन को मुनाफे में लाना है। इसी तरह शौचालय बनाए, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं स्वच्छ भारत का और 9 करोड़ के लगभग उन्होंने शौचालय बनाए, लेकिन एक भी शौचालय में पानी नहीं है।
अखिलेश जी, ये जो कह रहे हैं आप, तो 5 साल का केंद्र सरकार का इंटिनकम्बेंसी है, 2 साल से ज्यादा राज्य सरकार के भी हो गए हैं, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी दोनों एक साथ मिलकर के लड़ रही है, तो आप कितना मजबूती के साथ आप चुनौती दे पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी?
भारतीय जनता पार्टी का मुश्किल है पहले और दूसरे चरण में खाता खुले, अगर खाता भी खुलता है तो 7 चरण में चुनाव है, 2 डिजिट में भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाएगी। वो इसलिए गठबंधन तो है ही है, इसके साथ साथ जनता इनसे नाराज है। सब भारतीय जनता पार्टी के अपने आप चौकीदार बने जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ठोकीदार बने जा रहे हैं। कहीं ऐसा होता होगा कि जात देख करके गोली चला देते हो? मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो कोर्ट में जो मुकदमे हैं वो खत्म हो जाएंगे, लोगों के जल्दी न्याय मिल जाएगा। लेकिन आज जब 5 साल पूरे हो गए, 50 लाख ज्यादा केस बढ़ गए हैं, और अगर 50 लाख केस देखें ज्यादा किसके बढ़े हैं, तो वो दलित हैं, पिछड़े हैं और अल्पसंख्यक हैं, उन्हीं पर ज्यादा मुकदमे 5 साल में हुए हैं। इसीलिए जब उन्होंने अध्ययन कराया होगा कि आखिरकार मुकदमे में फंसा कौन है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अच्छा है जो लोग इस तरह के हैं वो फंसे रहे मुकदमों में, हमें जरूरी नहीं है कि अपना जो संकल्प पत्र में कहा था वो याद करें।
ये आपको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ होती, गठबंधन में होती, तो और ज्यादा फायदा होता?
देखिए, कांग्रेस गठबंधन में नहीं आना चाहती थी क्योंकि कांग्रेस का अपना रास्ता है, वो भारतीय जनता पार्टी को रोकना नहीं चाहते, वो अपना दल उत्तर प्रदेश में उनका कैसे बन जाए उनका वो लक्ष्य है। अगर उनका वो लक्ष्य है तो अच्छी बात है, उन्हें क्यों फिर गठबंधन की जरूरत है? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी का मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को रोका जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में कैसे कांग्रेस पार्टी जिंदा हो जाए, तो दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं।
आप लोग 80 सीट पर चुनाव ही लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी जीतती है तो बनेगा कौन प्रधानमंत्री?
गठबंधन की कोशिश है कि देश में नई सरकार बने और नई सरकार के नए प्रधानमंत्री बने। हम किसी को हटाना नहीं चाहते हैं, अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें हम, नोटबंदी पे आज बताना नहीं चाहते, GST के कितना मुनाफा हुआ है, व्यापारियों को कल तालकटोरा में इसलिए बुलाया था कि व्यापारी बहुत बड़े पैमाने पे नाराज है। व्यापारी इसलिए नाराज है कि जो बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है मल्टीनेशनल कंपनियों में, आने वाले समय में उनका व्यापार खत्म हो जाएगा, जो छोटी मोटी दुकान भी करते हैं वो नहीं कर पाएंगे।
नहीं, मेरे सवाल का जवाब आया नहीं कि गठबंधन जीतता है, आपकी पार्टी पर्याप्त सीटें लाती है, तो प्रधानमंत्री को हटा के आप किसको बनाएंगे?
मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूं कि देश में नई सरकार बने, देश में नया प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी नया देश नहीं बना सकती, नई पार्टी नया प्रधानमंत्री इस देश को नया बनाएगा।
नया प्रधानमंत्री ही चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी में ही कोई नया प्रधानमंत्री बने आपकी ये भी?
भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नया प्रधानमंत्री नहीं है, इसलिए विपक्ष ही नया प्रधानमंत्री देगा। समय समय पर जब कभी सरकारें बनी हैं उसका प्रधानमंत्री अपने आप चुन लिया गया है।
आपके साथ एक चुनौती ये भी है कि आपके अपने चाचा जी अलग होकर के उन्होंने अलग पार्टी बना ली और अब आपके पार्टी के प्रत्याशियों को, गठबंधन के प्रत्याशियों को चुनौती भी दे रहे हैं, तो ये चुनौती भी आपके सामने कितनी बड़ी होकर के निकली है, कितनी महत्वपूर्ण है?
देखिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलडी का मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी से जब ये गठबंधन टकरा रहा है तो मैं समझता हूँ इसके आसपास कोई दल है ही नहीं, और जनता ने करके दिखाया। अभी उपचुनाव जब हुए थे तो इसी गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, और वो सीटें भारतीय जनता पार्टी हराई जहाँ पर मुख्यमंत्री जी खुद आते थे चुन करके। कभी कल्पना नहीं कर सकता था कोई कि गोरखपुर सीट भी हारी जा सकती है, जीत जाएगा विपक्ष, गोरखपुर जीत गए। फूलपुर जहाँ से उनके पिछड़े उप मुख्यमंत्री आते हैं,
आजमगढ़ में आपके प्रतिद्वंद्वी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश जी को भी अब चेत लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि धारा किस ओर बह रही है। आपके पहले सहयोगी रहे, आपके लिए प्रचार भी करते रहे, तो उनका इशारा क्या है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में फंस गई। ये भारतीय जनता पार्टी वो है जो आरोप समाजवादियों पे या दूसरे दलों पे लगाते थे कि उनके पास अपना नेतृत्व नहीं है, अपने लीडर नहीं है, इसलिए मुंबई की तरफ देखते हैं। आज देखो, भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी उसके जस्ट अपोजिट काम कर रही है।
अच्छा, आजमगढ़ में जिस प्रत्याशी को खड़ा किया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा है आपके लिए, आपकी जीत शायद उससे आसान हो जाए।
मैं समझता हूँ मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद, बदायूं, इसके बाद अगर समाजवादियों के सबसे करीब कोई सीट है तो वो आजमगढ़ है। और फिर नेताजी अभी चुन करके गए थे, और नेताजी को भी उन परिस्थितियों में जिस समय न जाने क्या क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि उनकी सुनामी है, वेव है, न जाने क्या क्या है, उस समय भी जनता ने जिताया नेताजी को, और अब तो कहीं वेव नहीं है उनकी।
अखिलेश जी, आप प्रधानमंत्री बदलने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, नेताजी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामना दी कि वो फिर से चुन करके आए, इस विरोधाभास का जवाब आप अपने मतदाताओं को कैसे?
यही तो कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। अगर कोई शिष्टाचार में आपका सम्मान कर दे, शिष्टाचार में कोई बात कह दे, तो उसको भी पॉलिटिकल रास्ता ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए। अभी हाल ही में देखिए पुलवामा और बालाकोट को किस तरीके से अपने स्वार्थ में अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे, और यहाँ तक कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि देश इसलिए सुरक्षित है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम उन्हें कहना चाहते हैं देश इसलिए सुरक्षित रहता है, सीमा इसलिए सुरक्षित रहती क्योंकि वहां पर फौज के लोग जवान खड़े हुए हैं। सरकार तो आती जाती रहेगी लेकिन फौज नहीं हटती, फौज वहीं की वहीं रहती है।
बीजेपी के नेता आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, आपकी सरकार पर, पिछली जो आपकी सरकार थी, कि आप लोगों ने असामाजिक तत्वों को, गुंडों को प्रश्रय दिया, अपराधियों को प्रश्रय दिया, और अब भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको जेल में भेज दिया है जिसकी वजह से कानून व्यवस्था काफ़ी ठीक है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आपका तो चैनल बहुत बड़ा है, नाम बहुत है, बीबीसी है, आज मुख्यमंत्री कौन है वो अपनी एफआईआर की कॉपी भूल गए होंगे? उन्हें देखना चाहिए इलेक्शन कमीशन में उन्होंने जमा किया है, कितनी धाराएं उनके ऊपर और कैसी कैसी गंभीर धाराएं उनके ऊपर। उनके उप मुख्यमंत्री देखिए उन पे कितनी अच्छी धाराएं हैं, उन्हें एक दिन स्पेशल कोर्ट में बैठना पड़ गया था। नेशनल लीडरशिप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके कौन है? तो वो लोग जो अपराध को बढ़ा रहे हैं, नफरत को बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के बीच में दिलों में गहराई खोद रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद करोगे समाज को बांधेंगे? और फिर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए समाजवादी पार्टी का, आज जो लोकसभा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं आप बताइए कितने अपराधी लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो आज अपराध को भी बढ़ा रही है और अपराधियों को भी सम्मान कर रही है।
अखिलेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो गठबंधन आपका है, और जाहिर सी बात है आप लोग कह रहे हैं कि ये 2022 के विधानसभा चुनाव तक भी रहेगा, तब तक जारी रहेगा, और आगे कितना आप इसको ले जाएंगे, कब तक रहेगा
ये गठबंधन? आगे भी चलेगा, इसी तरह चलता रहेगा क्योंकि ये विचारों का संगम है।
तो जब इतना गहरा रिश्ता है तो दोनों पार्टियां एक साथ ही क्यों नहीं हो जाती हैं, यानी एक में मिल क्यों नहीं जाती हैं?
ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये कहूँ कि साइकिल के दो पहिए हैं तो बैलेंस अच्छा बनता है।
ये थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, और उनसे बात कर रहे थे समीर आत्मज मिश्र। और आपको बता दें कि आईपीएल में आज के पहले मैच में हैदराबाद की टीम ने केकेआर को 9 विकेट से मात दी है। आज का दूसरा मैच चेन्नई और बेंगलोर की टीमों के बीच है, यानी महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की टीमें आमने सामने हैं। और अब चलते चलते मुख्य समाचार मोहम्मद शाहिद से।
बीबीसी समाचार। श्रीलंका में आज 8 जगहों पर सिलसिलेवार तरीके से बम और आत्मघाती धमाके हुए। पुलिस का कहना है कि देश के चर्चों और आलिशान होटलों में हुए इन धमाकों में कम से कम 207 लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों घायल हैं। इस घटना के बाद 7 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं ईसाइयों के शीर्ष धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने आज ईस्टर के मौके पर श्रीलंका के हमलों को भयावह बताया है। लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो गया। 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 सीटों पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस दौरान गुजरात की कुल 26, केरल की कुल 20, कर्नाटक की अंतिम 14 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान होगा। यूक्रेन में राष्ट्रपति पद के लिए चल रहे मतदान में हास्य अभिनेता वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और वर्तमान राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के बीच मुकाबला है। ओपिनियन पोल में माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की पोरोशेंको को हरा सकते हैं। पोरोशेंको 2014 से देश की कमान संभाल रहे हैं। बीबीसी समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी अजीत सारथी के हाथ। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।